देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। अभी आपने इस हफ्ते थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया, ये नहीं पता कि आपने कितनों को थैंक्स कहा या टर्की खाया, वो अलग बात है। ठीक है, जो थैंक्स गिविंग डे है वो एक हिस्टोरिकल है, फेस्टिवल है, पर हम सबके जीवन में तो ये मोमेंट आता ही है कि हम थैंकफुल बने हर वो चीज के लिए जो हमें मिला है। ऐसे हजारों लाखों चीजें जो हमें पता ही नहीं कि हमें मिला है, क्योंकि हमारे अंदर कभी वो अवेयरनेस रहा ही नहीं कि वो हमें मिला है, क्योंकि हम उन चीजों के लिए ज्यादा वरीड रहे जो हमें नहीं मिला और हम इग्नोर करते गए, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड जो हमें मिला है, और उसका रिजल्ट है कि हम लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी मोस्ट ऑफ टाइम दुखी मिलते हैं, परेशान मिलते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को काउंट नहीं करते हैं जो हमें मिला है। हम उन लोगों को काउंट नहीं करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे लिए कुछ करते हैं। हम उनको ज्यादा काउंट करते हैं जो हमारे लिए कुछ नुकसान करते हैं या नुकसान करना चाहते हैं, और हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए कुछ किया है या करते हैं, करने की भावना रखते हैं। और कभी कभी ऐसे फेस्टिवल हमें रिमाइंड करते हैं हिस्ट्री को छोड़ के कि हम अपने लाइफ में भी कभी कभी झांकें, देखें कि हमारे जीवन में क्या क्या है। ये तो 365 दिन तो हम ढूंढते रहते हैं क्या क्या कमी है, घर में क्या कमी रह गया, मेरे लाइफ में क्या कमी रह गया, हस्बैंड में क्या कमी है, वाइफ में क्या कमी है, ससुरालों में क्या कमी है, माँ बाप में क्या कमी है, वो तो ढूंढते रहते हैं। पर कभी कभी ये भी ढूंढे कि मेरे पास क्या है, मेरे दूसरे लोगों के पास है। जैसे ही आप ढूंढने लगेंगे तो आपकी लिस्ट की खत्म ही नहीं होगी, एंड ही नहीं होगा, इतने सारे चीजें हैं। तो जब आप अवेयरनेस लाएंगे मेरे पास क्या है और मुझे लोगों ने मुझे क्या दिया, जरूरी नहीं लोगों ने, ईश्वर से लेकर के हमारे आसपास के इकोसिस्टम तक कितने लोगों ने हमारे ऊपर कितने चीजों ने एहसान किया है, तो जब ऐसा आप हमारे अंदर कभी थोड़ी देर के लिए हो, एक घंटे के लिए हो, एक दिन के लिए हो, या पूरे लाइफ में जिसके अंदर जितना ये सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आता है कि मुझे क्या मिला है, तो वो अप्रिसिएशन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए या अपने ग्रैटिट्यूड बताने के लिए नहीं होता है, उससे हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। हम एक दुखी इंसान से बड़े हंसते खिलने वाले इंसान बन जाते हैं, और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा कि लाइफ में आप हमेशा हंसते खिलते मिले। कोशिश करके होता ही नहीं है, सब कुछ है तो भी हम इतने खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते हैं। और उनमें से एक कॉज है कि हम थैंकफुल होने की जगह मोस्ट ऑफ टाइम थैंकलेस हो जाते हैं, हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं, पत्नी की सेवा को, पति के डेडिकेशन को, बच्चों के, माँ बाप के सैक्रिफाइस को, फ्रेंड्स के वेल विश को, जो भी जिसने किया है वो हम वी आर जस्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड, इसीलिए हम थैंकलेस लाइफ बनते हैं। और जैसे ही आप अप्रिसिएशन के एटीट्यूड लाने लगते हैं, हम देखते हैं हमारा लाइफ कितना सुंदर हो जाता है, नेचर बदल जाता है, मन बदल जाता है, हम उन कांटों में भी फूलों को गिलने लगते हैं। तो ये जरूरी है कि जीवन में वो कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का सेंस आए। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदिक शास्त्र, इसीलिए हमें जब बच्चा प्राचीन काल में गुरुकुल जाता था पढ़ने के लिए, आजकल वैसे ऑफिशियल एज है 6 ईयर से जब फर्स्ट ग्रेड में बच्चा जाता है, वैसे 2-2.5 साल से बच्चा शुरू कर देता है स्कूल जाना, तो पहले 7-8 साल तक माँ बाप जो भी पढ़ाते थे 7th और 8th ईयर्स में वो गुरुकुल जाता था एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के बाद जो उसका इनिशिएशन होता था उसको कहते थे उपनयन संस्कार, आजकल की भाषा में आप जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो जनेऊ संस्कार में जो जनेऊ पहना गुरुजी पहनाते थे कि अब आगे से गुरुकुल में ये पहना के रखना, आज की कंटेम्परेरी अगर उसका कोई वर्ड है आप कह सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म, ये जो जैसे आप बच्चे के आइडेंटिटी कार्ड या यूनिफॉर्म देख के आप समझते हैं कि स्कूल जाने वाला बच्चा होगा, तो पहले जनेऊ देख के लोग समझते थे या तो वो गुरुकुल में पढ़ता है या पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। वो जनेऊ में तीन धागे होते थे, मतलब अभी भी जो पहनते हैं आप में से अगर किसी में होगा, तीन धागे होते हैं। वो हर एक यो तीन धागे क्यों? क्योंकि एजुकेशन पाने के बाद जो पहली चीजें तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ डेट्स हैं और जो लाइफ लॉन्ग वो तुम्हें याद रखना है। वो डेट्स क्या है? वही कि मेरे ऊपर किस किस का क्या एहसान हुआ है उसको याद रखना है। उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया गया। पहले को हमने कहा ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। ऋषि ऋण जो ज्ञान हमें मिल रहा है या मिलेगा उसके जो भी सोर्स हैं, वो डायरेक्ट क्लासरूम का टीचर हो, जिससे भी हमें कोई ज्ञान मिला है, या कोई बुक राइटर हो, या कोई भी व्यक्ति, या कोई भी बुक, या कहीं से भी कोई नेचर से आपको कोई नॉलेज मिलता है, कोई रियलाइजेशन मिलता है, वो उन सब के बिना हम मूर्ख होते, हम एनिमल पशुओं की तरह होते हैं, तो उनके प्रति भी तुम ऋणी हो तुम, और उसके प्रति तुम्हें ध्यान रखना है। इसी तरह हमारे जो नेचर है, ईश्वर से लेकर के नेचर का हर वो एलिमेंट, वो हवा हो, पानी हो, आकाश हो, सूरज हो, अग्नि हो, जिनके कारण हमारा जीवन है, उनके प्रति भी हम इंडेप्टेड हैं। और तीसरा हमारे माँ बाप हैं, परिजन हैं, जो परिवारजन हैं, जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया, शिक्षा दी, उन सब के प्रति भी हमारा एहसान भाव है। ये तीनों को याद रखने के लिए बच्चे को जनेऊ होते ही तीन धागे दिए जाते थे। और वो तीन धागा कब तक रखता है जनेऊ? जनेऊ जो पहनते हैं उनको निकालने का नहीं अधिकार नहीं होता है, या तो मरने के साथ हो जाता है क्योंकि पूरी जिंदगी आप इनको चुका नहीं सकते हो, या दो तरह की मौत होती है हिंदू धर्म में, एक तो जब आप फिजिकली डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, या जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सोसाइटी मेरे लिए बेकार है, जब आप संन्यास दीक्षा लेते हैं। आपको पता है जब लोग संन्यास दीक्षा लेते हैं तो उनके भी अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है, मतलब उनको श्राद्ध कर दिया जाता है कि ये मर गया, उनके पीछे कोई और क्रिया नहीं होती है। तो दोनों अवस्था में आप जनेऊ छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी जनेऊ रखना पड़ता था। वो तीन ऋण क्या क्या है? पहला है देव ऋण। देवता का अर्थ है जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर से लेकर के जैसे मैंने कहा नेचर का वो हर एलिमेंट, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, धरती हो, सबका, उन सबके प्रति अगर वो नहीं होते तो हमारा जीवन ही नहीं होता, हम जन्म ही नहीं होते, लाइफ नहीं होता। तो उन सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको याद रखना कि हम कितना इंडेप्टेड हैं उन चीजों के प्रति, हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। उसी में से जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ होना हर वो चीज के प्रति, वो हवा हो, पानी हो, आकाश हो, उनको उसी तरह से ट्रीट करना, तो ये है देव ऋण का सेंस बनाए रखना। और इसका अपोजिट देखिए, जब आप इन चीजों को भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, थैंकलेस हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पानी का, हवा का, वो नेचुरल सोर्सेस का एक्सप्लोइट करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम बिल्कुल एक टॉक्सिक प्लैनेट छोड़कर जाते हैं, जहां ढंग का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और स्पेस नहीं मिलेगा, और क्या क्या होगा। सिर्फ 400 साल के टेक्निकल जो रिवॉल्यूशन हुआ 16 सेंचुरी से लेकर आज तक, हमने इतने सारे टेक्नोलॉजी बनाए, और उनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी हम इस इकोसिस्टम को, ईश्वर के दिया गया नेचर को एक्सप्लोइट करने के लिए यूज किया। विदाउट एनी रेस्पेक्ट, विदाउट एनी सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हम इस संसार को एक्सप्लोइट करते हैं। पर हमारा जो धर्म है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें सिखाता है कि सिर्फ तुम इंसानों को रेस्पेक्ट मत करो, तुम्हारे जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, आकाश से लेकर के तुम्हारे पड़ोस का जो पेड़ पौधा है, प्लांट है, उसका भी ध्यान रखो, उसको भी रेस्पेक्ट करो, और उसके प्रति तुम उतना ही इंडेप्टेड से भाव रखो जितना तुम किसी इंसान के प्रति रखते हो। इसी को कहते हैं देव ऋण। और इसको चुकाना है तो उसके लिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो व्यवस्था दी कि आप देव यज्ञ करो, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो आप अग्निहोत्र करते हो, वायुमंडल को जो हमने दूषित करने की, जितना भी नेचुरल वे में हम उसको गंदा करते हैं, उतने ही नेचुरल वे में हम इसको प्योर बनाए रखने की कोशिश करें, उस कोशिश का नाम होता है देव यज्ञ। अगला है ऋषि यज्ञ। जो ऋण हमें ऋषियों से मिला, ऋषि का मतलब यहां, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में जो ज्ञान का पहला सोर्स है वो ऋषियों से शुरू होता है, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, यही शायद दुनिया का, इस प्लैनेट का जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है वो वेद है, उससे पुराना कोई बुक है ही नहीं है। तो ज्ञान का जो पहला सोर्स है वो ऋषियों से शुरू होता है ईश्वर के बाद, इसीलिए इसका नाम हुआ ऋषि ऋण। भाव यह है कि ज्ञान का जो भी सोर्स है आपका, आप जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है आपके अंदर, उसके प्रति उससे इन सब ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ज्ञान फ्लो नहीं कर पाएगा, दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो आपकी क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर हो, वो आपके एलिमेंट्री टीचर हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आपको कहां क्या क्या ज्ञान मिलता है, कहां से मिलता है, कब मिलता है, तो उन सभी के प्रति भाव रखना। हो सकता है कि आप उनको नहीं जानते हैं, आप किसी का बुक पढ़ते हैं, जिस बुक से ज्ञान मिलता है, आप उस ऑथर को जानते ही नहीं है, पर आपके अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है। उसी वाद को ऋषि ऋण व्यक्त करता है कि ये तुम्हारा ऋषि ऋण है, इसको नहीं भूलना है। ब्रह्मचार्य आचार्य तीसरे जनेऊ के तीसरे धागे से ये ज्ञान देते हैं शिष्य को कि तुम्हारा तीसरा ऋण है तुम्हारे जीवन में अपने पिता माता के प्रति ऋण, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, जो जन्म तो दिया पर उसके अलावा भी जो अब तुम्हें बड़ा करने में, अच्छा बनाने में जो भी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, वो भी तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये तीन ऋण हमें, इसीलिए प्राचीन काल से ये बताया जाता रहा ब्रह्मचारियों को। और वो कब, जब बच्चे में थोड़ा सा भी सेंस आया, इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा वो डेवलप्ड हुआ, स्कूल में पहली बार पैर रखा, तभी से उसके कान में ये बार बार डाला गया कि यू हैव टू बी थैंकफुल, यू हैव टू बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दोज थिंग्स और बींग्स हु हैव ए कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ। अगर खाली सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हो, जैसे ही आपके अंदर वो सेंस आ जाए कि मेरे जीवन में किसका क्या उपकार है, भलाई है, तो फिर आप जो कुछ भी करेंगे उसको हम यज्ञ कहते हैं। कोई भी काम जब हम सिर्फ सेल्फ को सेंटर में रखकर करते हैं, स्वार्थ को सामने रखकर करते हैं, वो काम होता है। और वही सेम काम जैसे ही आप किसी अच्छे इंटेंशन के साथ दूसरों के भलाई के साथ अपने आप को जोड़कर करते हैं, कलेक्टिव वेलबींग के साथ करते हैं, अपने आप को उदार बना के करते हैं, बड़ा ओपन माइंडेड ग्रेटर माइंडसेट के साथ करते हैं, तो वो हर काम यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐतिरी आरण्यक में आता है यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, वो हर काम जो श्रेष्ठतम हो, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम हो, वो सब यज्ञ है। बेस्ट ऑफ बेस्ट का मतलब नहीं कि आप प्रोफेशनली कितना परफेक्ट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो काम के पीछे तुम्हारा इंटेंशन कितना परफेक्ट है। जब तुम्हारा इंटेंशन जितना ज्यादा परफेक्ट होगा काम के पीछे का, वो काम ही बेस्ट होगा, और वही काम यज्ञ कहलाता है। और वो जो तीन ऋण हमारे जीवन में हमें याद रखने की जरूरत है उन तीन ऋणों को सूझने के लिए, उनको परिशोध करने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा पंच महायज्ञ रोज करो। यज्ञ तो यज्ञ, महा क्यों? महानता का, ग्रेटनेस का सिर्फ इतना मतलब है जिसको ना करने से गलत होता है, पाप होता है, करने से फायदा होता है नहीं होता है ये मैटर नहीं करता, पर ना करने से नुकसान होता हो वो सब ग्रेटनेस में कैटेगरी में आते हैं। पंचवायते महायज्ञा सतति प्रतायन्ते सतति संतिष्ठन्ते देवयज्ञ पितृयज्ञो भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। तैतिरीयारण्यक का ये मंत्र है कि पांच डेली ड्यूटीज सबको परफॉर्म करने की जरूरत है अपने लाइफ को ठीक रखने के लिए और दूसरों के साथ हार्मोनी बनाए रखने के लिए। जब दूसरे कहते हैं तो सिर्फ मनुष्य नहीं, दूसरे मतलब आपको छोड़कर हर वो चीज, वो जड़ है या चेतन है, वो सेंटिएंट है या इनसेंटिएंट है, उनके साथ हार्मोनी बनाए रखने के लिए जो चीजें करने की जरूरत है उसे पांच महायज्ञ कहते हैं। और ये पंच महायज्ञ सिर्फ इसी बात को इंडिकेट करता है कि आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे लाइफ में किस किस का क्या उपकार है और मैं कैसे उसके प्रति उस रिस्पेक्ट के भाव के साथ, ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ देखूं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहला नेचुरली हमारे लाइफ में अगर सबसे पहले किसी के प्रति हम थैंकफुल हों तो वो ईश्वरी है, परमात्मा है, वहीं से शुरू करेंगे सब काम, ओम से ही। ओम का मतलब क्या है? परमात्मा। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो ओम के साथ ही करते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले सत्शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। प्रण मतलब ओंकार, ओंकार या ईश्वर का नाम कीर्तन करना, उसको मन में चिंतन मनन करना, ईश्वर के बारे में भक्ति रखना, अपने आप को सरेंडर करना, ये फील करना है कि ईश्वर कण कण में है, मेरे जीवन में जो कुछ है उसी के कारण है। इस फीलिंग को लाने के लिए कोशिश करना, एफर्ट करना आसानी से आता नहीं है। अच्छी चीजें, इन चीजों के लिए एफर्ट करना पड़ता है, पर सब में नहीं, कुछ लोगों में एफर्टलेसली भी आता है, जिनमें नहीं आता है उनको लाने की कोशिश करना पड़ता है और उसी का नाम होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है, अपने आप को सही करने का नाम, करेक्ट करने का नाम, मन और शरीर को शुद्ध प्योर करने का नाम है स्पिरिचुअलिटी। उसके लिए क्या करें? जब भी मौका मिले, प्राचीन काल में व्यवस्था थी सुबह शाम, अब संध्या करो। संध्या का मतलब होता है सम्यक रूप से अच्छी तरह ईश्वर में मन लगाने की कोशिश करो। सम्यक ध्यायते, कोशिश करो, मतलब आसानी से नहीं होगा, किसी की जल्दी होगा, किसी को देर होगा, पर कोशिश जरूरी होती है ना। और सत्शास्त्राणाम अध्ययनम, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। वो बुक्स तो जो आप पढ़ते हैं वो तो ठीक है, जो आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सब अलग चीज है। वो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जीविका के लिए, प्रोफेशन के लिए, पर लाइफ के लिए जो जरूरी है, मैं क्या हूं, कहां से आया, पैदा होने से पहले क्या था, कहां जाऊंगा, ये दुनिया क्या है, इसको समझने के लिए जो शास्त्र हैं उनको पढ़ें। उसका भाव क्या है? एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड ईश्वर के प्रति कि तुमने हमें इंसान बनाया, सहज नहीं है दुनिया में। वैसे जैन शास्त्रों में 64,64,00,000 तरह की योनियां मानी जाती है, मतलब 6,400,000 टाइप्स ऑफ स्पीसीज। बोला आजकल बायोलॉजी में तो उससे भी ज्यादा तरह के स्पीसीज वो बता चुके हैं, उनमें से एक इंसान है, द बेस्ट स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। अरे आसान नहीं है ऐसा जन्म पाना, तो ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना कि इंसान बनाया, समझने सोचने की शक्ति दी, हाथ पैर आंख कान नाक सब दिया, शरीर इतना सुंदर दिया, पर सुंदरता का मतलब ऊपर से नहीं, शरीर इतना फंक्शनल इतना हेल्दी शरीर दिया, वो अलग बात है कि उस शरीर को हम ही खराब करते हैं जब बीमार पड़ते हैं, कहते हैं ईश्वर ने ऐसे कर दिया। ईश्वर का कोई काम धंधा नहीं है कि आपको बीमार बनाने के लिए बैठा हुआ है। वो खान पान ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, नींद ठीक रखो, स्ट्रेस कम रखो, बॉडी को ठीक रखो, और बॉडी को खाली नहीं माइंड को भी ठीक रखो। हमेशा फालतू के पैसे और पावर के नशे में स्ट्रेस में मत रहो, थोड़ा रिलैक्स करो तो अपने आप ठीक रहोगे। तो उसमें ईश्वर का कोई काम धंधा नहीं कि वो आपको बीमार पड़े हॉस्पिटल में डलवाए, मतलब वो थोड़े ही कि उसको कोई ऐसे साइक टाइप का आदमी है कि जिसको तड़पाने में मजा आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुंदर शरीर दिया है और उसके प्रति हमेशा जीवन भर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना, और उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करना और शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझने जानने के लिए ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा कहा देव यज्ञ। देव यज्ञ जो हम अग्नि में आहुति देते हैं, अभी जैसे यजमानों ने किया, दो परिवारों ने किया, आपने देखा, आप लोग भी करते हैं, पर ये तो हम साल में एक आधा बार आजकल कर लेते हैं। कुछ परिवार हैं, इवन ह्यूस्टन में भी हैं, जो प्रतिदिन हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, सुबह शाम करने का विधान है, सुबह और शाम दोनों टाइम प्रतिदिन करने का विधान है। जैसे आप रोज सुबह शाम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जो भी करते हैं, ये नित्य कर्म है। ये ब्रह्म यज्ञ भी ये पंचों के पांचों रोज करने का विधान है, दो टाइम नहीं तो एक टाइम, दोनों टाइम जरूर करने का विधान है। क्यों? अगेन रिस्पेक्टिंग दो जो देवाज, देव कौन है? दानाद बा, दीपनाद बा, द्योतनाद बा, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, जिन्होंने हमें प्रकाशित किया है, या जो खुद प्रकाशित होते हैं, तो किसने हमें दिया है? तो सवाल है कि किसने नहीं दिया आपको कुछ? सूरज नहीं होता तो हम नहीं होते, पानी नहीं होता तो हम नहीं होते, वायु नहीं होता तो हम नहीं होते, धरती नहीं होती तो हम, तो बताते जाओ ना क्या नहीं होते तो तुम होते। ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स भी नहीं होते तो तुम्हारे इकोसिस्टम भी ठीक नहीं होता, तब भी तुम नहीं होते। ये पहाड़ पर्वत नाले पानी झरना, ये सब का कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। ये सब देव हैं, इसीलिए हमारे संस्कृति में सबको हम पूजते हैं। वो अलग बात है, पूजने का सिंपल अर्थ होता है रेस्पेक्ट करना, किसी को खुश करने के लिए जो जरूरत पड़े करना। हम नदियों को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, बकरी को पूजते हैं, ये हमारी संस्कृति है। वो अलग चीज है कि हम पूजा के नाम पर आजकल बड़े उटपटांग हरकतें करते हैं और सोचते हैं कि हम पूजते हैं। अब जैसे आप नदी को पूजने के नाम पर नदी को आरती उतारो, अब नदी को आरती उतारो, नदी को इंसान थोड़ी कि खुश हो जाएगा, चलो आरती किया। भाई नदी की रेस्पेक्ट करना है तो नदी को साफ रखो, उसको गंदा मत करो, उसको बहने दो, पानी साफ रहो तो नदी खुश है। अब पेड़ों को पूजने के नाम पर पेड़ों में लाल धागा बांधो, आरती उतारो, अब पेड़ क्या करेगा लाल धागे से? पेड़ में जान होती, कहता अगर इतनी पूजा करने की शौक है, गर्मी में थोड़ा ध्यान रखना, पानी देते रहना, ठंड में थोड़ा केयर करना, को ढक के रखना, मैं जिंदा रहूं तो तुम्हारे ही काम आऊंगा, बस इससे ज्यादा और क्या? पेड़ मुझे काटना नहीं अननेसेसरी, अपने लालच के कारण, पैसा कमाने के कारण, मेरा ध्यान रखना, तुम तो बड़ा घर बनाओगे पर मेरे हजारों खानदान को उजाड़ दोगे, ऐसा मत करना, बस यही है पेड़ के लिए सम्मान। गाय को पूछते हैं, आरती उतारते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, तो गाय में जान होती तो बोलता है अगर सम्मान करने की इच्छा है तो मेरे बछड़े को कभी कभी छोड़ दिया करना, मेरे दूध पी लिया करे, मुझे भी कभी छोड़ देना, घास खा लिया करूं, मेरे नाक में भी रस्सी डाल के बांधे रखते हो और आरती उतारते हो, जय गो माता, शर्म आनी चाहिए ना। तो पूजा की तरीका बदलने की जरूरत है। पर पूजा बड़ा बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे यहां, और उसके पीछे बहुत बड़ा भाव है उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का। यहां अमेरिका में पूछते हैं, ये हिंदू लोग गाय पूछते हो, क्यों पूछते हो? मतलब पूछते तो नहीं है, रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए कि मां के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में, हमारे खून में कुछ है, वो गाय का है। गाय के दूध, जब से मां का दूध छोड़ा तब से गाय के दूध पीकर बड़े हुए। जो घर के खेतों से जो अनाज आया वो गाय और बैलों के मेहनत से आया, इसीलिए हम गाय को रेस्पेक्ट करते हैं। वही द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है हमारे कल्चर में। इसीलिए नेचर के हर वो चीज को रेस्पेक्ट करने का भाव था, अभी भी है। उन चीजों को ठीक ठाक रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा, जब आप प्रॉपर वे में हवन करते हो, एक प्रॉपर हवन कुंड में जिसकी अपनी मेजरमेंट भी है, कोई ऐसा वैसा हवन कुंड में नहीं जिसकी अपनी पर्टिकुलर मेजरमेंट हो, जिसमें प्रॉपर पोषण के साथ सही घी और सामग्री का कॉम्बिनेशन हो, जब आप ऐसे प्रॉपर रूल्स फॉलो करके यज्ञ करते हो रोज सुबह शाम, तो वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने में, प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हो। जो एटमॉस्फेयर प्यूरिफाइड होता है तो पानी जो बरसता है वो भी अच्छा होता है। जो अच्छे टॉक्सिक वाला पानी नहीं बरसता, साफ पानी बरसे तो वेजिटेशन भी अच्छा होता है, पीने का पानी भी अच्छा मिलता है, तुम्हारा इकोसिस्टम ठीक रहता है। ये देव यज्ञ का उद्देश्य था उस ऋण को याद करने के लिए। अगला कहा पितृयज्ञ, पितृ ऋण शोधने के लिए मां बाप की सेवा करो। और मां बाप की सेवा की जरूरत ज्यादा बुढ़ापा में होती है, और तभी हम छोड़ देते हैं, ध्यान देना बंद कर देते हैं जब उनकी जरूरत होती है, फाइनेंशियली, सोशियली, फिजिकली उनको हमारी जरूरत होती है, जितना बन सके करने की जरूरत है। उनको ये फील कराने की जरूरत है कि आप हमारे लिए कितना एडोरेबल हो, हम आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर, हम पास हैं दूर हैं, हमारे अंदर आपके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है। वो और कुछ नहीं मांगते। अगर उनको बस पता चले कि उनके बेटे, बहु, बेटी उनके प्रति वो सम्मान भाव रखते हैं, वो या ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया, उतने में वो गदगद हो जाते हैं। उनको कोई आपकी लंबी कार की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े घर की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस मीठे बातों के साथ उनके साथ समय बिताना, उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना। भारत में जहां इतना सुंदर थैंकफुल होने की ट्रेडिशन था, हमने उनको चेंज चांज कर दिया। जीते जी मां बाप को पूछते नहीं है, पूछते भी हैं पर मरने के बाद बहुत बड़ा आडंबर करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाना, वो करना, हजारों लाखों खर्च करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है मरने के बाद जिसको जहां जाना है वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा। जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, घर की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए, पर जीते जी मां बाप को फील कराओ कि आपके अंदर कितना उनके प्रति सम्मान है, कितना ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर, उतना काफी है उनके लिए। 10 रुपए के जगह 5 रुपए में वो गुजारा कर लेंगे, पर उनको बस इतना अगर मिल जाए कि उनके बच्चे उनसे बड़े प्यार करते हैं, अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कितने भी दुनिया भर में कहीं भी रहें, एंजॉय करें, पर अपने मां बाप को याद रखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ये है पितृ यज्ञ। अगला यज्ञ है मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, दोनों नाम शास्त्रों में मिलते हैं अलग अलग जगह। अतिथि यज्ञ से आजकल हम थोड़ा मीनिंग को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अतिथि मतलब गेस्ट या घर में जो मेहमान आते हैं उनको रिस्पेक्ट करना, नहीं, प्राचीन काल में ये सेंस नहीं था। इस यज्ञ का सेंस वो नहीं है, इसमें वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कहां है? आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप रिस्पेक्ट करते हो, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपके घर जाऊं, आप मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो मैं भी आपके घर में वैसे ही करूंगा, तो वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बात नहीं है। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, डेट नहीं, टाइम नहीं, अचानक आया, दरवाजा खटकाया, भूख लग रहा है, खाना खिलाओ, तो आपने बड़े रिस्पेक्टफुली उसको घर बुलाया, खाना खिलाया, बैठाया, सत्कार किया। अब कहेंगे ये सब आजकल जमाने में थोड़े ही चलता है, पता नहीं कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई बंदूक लेकर आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, थोड़े दरवाजा खोलेंगे। पर आजकल जमाने के लिए ये उस समय की बात थी, इसकी सेंस समझने की जरूरत है, बैकग्राउंड। जब प्राचीन काल में चार आश्रम हुआ करते थे लाइफ का, ब्रह्मचर्य जो स्टूडेंट लाइफ है, गुरु के साथ रहता था, और गुरुजी जो गुरुकुल चलाते थे, कोई डोनेशन से नहीं चलाते थे, कोई ना राजा डोनेशन देता था, ना कोई पैसे वाले, ना कोई सरकार, कुछ नहीं, वो फकड़ थे। गुजारा कैसे करेंगे, खुद मेहनत करते थे। गुरु और शिष्य दोनों जो भी जंगल में खेती बाड़ी जो भी करके गुरुकुल के लिए अनाज करते थे, बाकी भिक्षा मांगते थे। ब्रह्मचर्य और गुरु जिस भी घर में चले गए भिक्षाम देही, तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है वो बिना अतिथि के पहुंचा हुआ उन गुरु और शिष्यों की ख्याल रखें, उनको पैसे से सम्मान से उनका सत्कार करें। क्यों, वहां मेरा बच्चा भी किसी दूसरे गुरुकुल में पढ़ रहा होगा, किसी का बच्चा मेरे पास वाले गुरुकुल में पढ़ता है, गुरु ना पैसा लेता है ना शिष्य के पास पैसा है, हमारे से ही गुजारा करते हैं, वो अतिथि थे। दूसरा अतिथि कौन था, वानप्रस्थी, मतलब आज की भाषा में आपको बोलें जो रिटायर्ड लाइफ है, आजकल तो रिटायर्ड के बाद लोगों को पता ही नहीं होता है करना क्या है, लाइफ को जीना कैसे है भूल जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ रखी है, सुबह हुआ ऑफिस गए, शाम आया घर आए, वीकेंड में इधर उधर गए, बस। वो तो जहां जॉब करते हैं उन लोगों ने लाइफ को एक तरह के बैलेंस्ड बना दिया, हमारे पास तो कोई अपने लिए कुछ था ही नहीं, कोई सोचे नहीं है, पर पहले बड़े हर चीज बड़े प्लानिंग होती थी, प्लानिंग में था वानप्रस्थ। रिटायर्ड के बाद, रिटायरमेंट का मतलब आज के भाषा में तो आपको कंपनी निकाल दिया, और या आप काम करने लायक नहीं रहे या आपकी जरूरत नहीं, आप छोड़ देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे बच्चे बच्चे वाले बन जाएं, मतलब जब हम ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएं, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म फैमिली से, अब हमारे बच्चे अपने फैमिली देखेंगे, हम पति पत्नी फ्री, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि काम छोड़ना है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम आप बदल सकते हैं, पर वही काम कर सकते हैं पर विथ डिफरेंट एटीट्यूड। वो एटीट्यूड क्या, कल तक सारा फोकस बैकग्राउंड में था मेरे परिवार, अब पूरा फोकस होगा मेरी सोसाइटी, मेरी सोसाइटी नहीं कोई भी सोसाइटी, कलेक्टिवनेस, सबके लिए करना है। वही पैसा अब परिवार के लिए नहीं दूसरों के लिए खर्च करना, वो टाइम परिवार के लिए नहीं दूसरों के लिए खर्च करना, वो सब कुछ करना पर दूसरों के लिए, अपने माइंड को ब्रॉडर बनाना। कल फैमिली इतना ही, इतने छोटे से लिमिटेशन के अंदर मेरा माइंड काम करता था, अब मैं इतने बड़े दायरे में काम करूंगा, अपने माइंड को हार्ट को थोड़ा ओपन करूंगा और कोशिश करता रहूंगा अपने आप को जानने की, ईश्वर को पाने की कोशिश में। अपने लिए कुछ नहीं है, सब समाज के लिए। और चौथा है सन्यासी, जो उससे भी ऊपर है, अपने शरीर का ध्यान नहीं, मन का ध्यान नहीं, ईश्वर की पाने की खोज और प्राणी मात्र के कल्याण की इच्छा में कोशिश करता हुआ सन्यासी। खाएंगे कहां, पिएंगे कहां, तो जिस भी घर में पहुंच गए गृहस्थी स्वागत करते थे, क्योंकि उनके मां बाप भी कहीं भीख मांग रहे होंगे, उनके दादा दादी भी कुछ कर रहे होंगे, अतिथि थे, उनकी यज्ञ सेवा करना, रिस्पेक्ट करना, ये अतिथि यज्ञ था। तो आज क्या करेंगे, उसकी सेंस को समझेंगे। सेंस ये था, हमारे में से कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो सोशल काम में लगा हुआ हो, सोसाइटी के लिए, कलेक्टिव वेलबींग के लिए लगा हुआ है, उसका ध्यान रखना है वानप्रस्थ आश्रम, यही है अतिथि यज्ञ। आज हमारे घर में कोई मांगने नहीं आता है, तो हम जाएं किसी ऑर्फनेज में जाएं, किसी ओल्ड एज होम में जाएं, जहां जरूरत है जिन लोगों को वहां जाएं, उनकी सेवा करें, उनका ख्याल करें, यह अतिथि यज्ञ है। आज हमारे घर में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर रहा ही नहीं कि बिना बिना बताए, बिना फोन किए घर में कोई दरवाजा खटखटाए, वो भी जरूरत के कारण। कोई हमारे रिलेटिव तो आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, पर हम उन तक जाएं जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल रखें, संस्था का ख्याल रखें, यह है अतिथि यज्ञ था। अगेन विद दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मेरा जीवन तो उसी से गुजरा है, उसी सोसाइटी से। अगर कुछ लोग लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करते, कुछ इंस्टीट्यूशंस दूसरों की सेवा नहीं करते, तो मैं ऐसा कैसे बनता है? तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं किसी के लिए करूं। पांचवा बोला भूत यज्ञ, जो बच गए ईश्वर, सबसे पहले ईश्वर के लिए ब्रह्म यज्ञ, ये नेचर का हर वो एलिमेंट देव यज्ञ, मां बाप ग्रैंड पेरेंट्स पितृ यज्ञ, सारे इंसान जिसकी भी कोई जरूरत हो, कोई नीडी हो, जिसको हेल्प की जरूरत है, वो मनुष्य यज्ञ। और बचे कौन? दूसरे प्राणी, जो हमारे आसपास के जो प्राणी दूसरे प्राणी हैं, उन पशु पक्षियों का ख्याल रखना, उनके प्रति दया का भाव रखना, जरूरत पड़ने पर जो भी आप उनको फीड करा सकते हैं, पिला सकते हैं, बीमार पड़ा हुआ है कोई जानवर तो उसका ख्याल रखें, ये कंपैशन के साथ उनके साथ बिहेव करना, ये है भूत यज्ञ। ये पांचों यज्ञ का एक ही उद्देश्य था कि तुम अकेले संसार में जी नहीं सकते हो, इन सब के बिना तुम्हारे लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है, इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज करो, इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करो। और जब तुम रिकॉग्नाइज करने लगोगे, तुम्हारे अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आने लगेगा, फिर जो कुछ उनके प्रति तुम करोगे वो यज्ञ हो जाएगा। इन्हीं में से कोई एक यज्ञ, पांच में से कोई एक यज्ञ होगा, और वो कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है जहां करोड़ों डॉलर की खर्च करने की जरूरत है, वो तो बिना पैसे के भी हो सकता है, पर वो महायज्ञ हो जाएगा। नंबर टू, हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि जब आपके प्रति किसी ने कुछ अच्छा किया तो आपको ग्रेटफुल होना अच्छा है, बहुत जरूरी है, उसके लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए। पर इसका जो एक बैड साइड है, डार्क साइड है, कि दूसरों से ग्रैटिट्यूड को एक्सपेक्ट करना। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी हम अच्छी चीजें सुनते हैं, हम फट से हिसाब लगाते हैं कि मेरे घर में जो दूसरे मेरे स्पाउस हैं, बच्चे हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, वो सब वो करते हैं कि नहीं करते हैं मेरे साथ। कोई भी बुरी चीजें सुनते हैं तो हम ये अंदाज खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो सब मेरे साथ करते हैं कि नहीं करते हैं। हम अपने आप को पूरा परमात्मा के बाद अपना ही नंबर आता है, शुद्ध पूत पवित्र। हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करने की एक अंदर से प्रॉब्लम हो रखा है। हमने सुना कि थैंकफुल होना चाहिए, घर जाकर पत्नी से पूछेंगे या पति से पूछेंगे, भाई थैंकफुल हो मेरे लिए। अभी तो सुनकर आए कि भाई ग्रेटफुल बनना चाहिए, तुम तो बड़ा ग्रेटलेस थैंकलेस हो। बात इसकी चर्चा नहीं हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि मैं थैंकफुल हूं कि नहीं हूं, अगर नहीं हूं तो करूं बनूं। ये चर्चा का विषय कभी नहीं रहा कि दूसरा थैंकफुल है, बनता है कि नहीं बनता। देवियों सज्जनों, करें दो चीजें हैं। पहली, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू अदर्स, एंड द सेकेंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम अदर्स। ये उतना ही जरूरी है, नहीं तो फिर हम दुखी बनेंगे, टेक एंड गिव में पड़े जाएंगे बिजनेस में, कि हमने दिया, हमने बोला था आपको थैंक्स और आपने तो बोला ही नहीं, वो फिर बिजनेस हुआ टेक एंड गिव वाला। और ग्रैटिट्यूड में ये नहीं होना चाहिए ना, मैं बनूं जो मुझे बनना है, दूसरा क्या करता है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूं। इसीलिए हमारे शास्त्र सिखाते हैं ग्रैटिट्यूड की, थैंकफुल की एक्सपेक्ट ही मत करो। इसलिए प्राचीन काल में आप देखेंगे इतने ऋषि मुनि, कोई नाम आप लेते हो आजकल के इतने सारे, पिछले 500 700 साल के हजारों गुरु आ चुके हैं, सबका नाम आप लेते हो, मंदिर बनाकर घूमते हैं, गुरु बना करके क्या क्या बना के, कितने ऋषि मुनियों का मंदिर है या गुरु बना के लोग पूछते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ किताब भी लिखा, कुछ बुक्स लिखे, कुछ टेक्स्ट लिखे, अपना नाम पता कहीं नहीं रखा। हमें ढूंढना पड़ता है कि इसको किसने लिखा, हमें गेस करना पड़ता है कि ये राइटर है या नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनको लगा इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाई शुड आई बी रिकॉग्नाइज्ड, यस आई हैव टू रिकॉग्नाइज अदर्स दोज हु हैव डन समथिंग फॉर मी। खैर ये बड़ा मुश्किल काम है, पर अगर उस लेवल पर कोई पहुंच जाए फिर तो वो तो बहुत ही महान है। पर नहीं भी पहुंच पाए, कल्टीवेट करें कि दूसरों से एक्सपेक्ट कम करें, दूसरों को देना सीखें। तो इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि भाई हमें कम से कम ये वाली जो पावर है, सामर्थ्य है, ये बहुत बड़ा पावर है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का, थैंकफुल होने का, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को हेल्दी रखने के लिए, मेंटली फिजिकली खुद को हैप्पी रखने के लिए भगवान हमें वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दे, उस ईश्वर से लेकर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक सबके प्रति हमारे अंदर वो भाव हो। और सच कहिए, जो भी पूजा अर्चना यज्ञ हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके मूल में वो ग्रैटिट्यूड ही शो करना होता है और कुछ नहीं। मांगने पर ईश्वर थोड़े देगा, मांगने वाला तो बेवकूफ होता है ईश्वर से। पैसा मांगना है तो लोगों से मांगो, हेल्थ मांगना है तो डॉक्टर से मांगो, ईश्वर से, ईश्वर ने सारी दुनिया दे रखी है तुम्हें, लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे इसका ध्यान रखते हो। प्रार्थना वही है, पूजा वही है, जहां हम ईश्वर के दिया हुआ को रिकॉग्नाइज करें। इसीलिए जब आप यज्ञ करते हैं, उस हर मंत्र के आखिर में आप बोलते हैं ना, स्वाहा इदन्न मम, मतलब कहीं तुम्हारे अंदर वो ईगो ना आ जाए कि देखो ईश्वर मैंने तुम्हारे लिए ये दान दिया, लो लड्डू चढ़ाया, केला चढ़ाया, ये घी चढ़ाया, नहीं, इधन ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हें ही सौंप रहा हूं, मैं कहां, मैं तो बीच में बस एक मीडिएटर हूं, दैट्स इट। इसीलिए अगर मन में कभी या जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है, सबने धोखा दिया, सबने परेशान किया, लाइफ में कुछ नहीं बचा, छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, जो भी, तो समझ लीजिए कि अंदर दूसरों ने जो किया किया, आपके अंदर भी थैंकलेसनेस की बहुत बड़ा गठरी बढ़ चुकी है, उसको वापस लेने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि मेरे लाइफ में किसी ने क्या किया है, फिर देखेंगे हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मन में हमेशा ये सेंस बना के रखें, छोटी से चीजों से लेकर बड़े से बड़े चीजों का, जिसने भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, करें, ना कर सकते ना करें, पर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड अंदर होना चाहिए, और अगर आ जाए तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इसी भाव के साथ ईश्वर से किसी कवि ने ये सुंदर अंग्रेजी की कविता लिखी, ईश्वर से प्रार्थना कही, गॉड द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ। भाई सबसे पहला ग्रेटफुल तो लाइफ मिला है, इसीलिए होना है, फॉर द ब्रीथ दैट सस्टेन्स माय लाइफ, फॉर द बीटिंग ऑफ माय हार्ट, for the food of this earth that nurtures life, I am grateful for beloved ones who share life with me, those in our world beside me and those in worlds beyond my knowing। ऐसे लाखों लोग हैं, चीजें हैं जो हमारे बैकग्राउंड में हमें हेल्प करते हैं, हमें पता नहीं होता है। for the love of family and friends without whom there would be no life, oh God we thank you for the mystery of this creation, for the beauty that the eye can see, for the joy that the ear may hear, for the unknown that we cannot behold, filling the universe with wonder, for the expanse of space that draws us beyond the definitions of ourselves. We thank you for setting us in communities, without that we cannot survive. for families who nurture our becoming, for friends who love us by choice, for companions at work who share our burdens and daily tasks, for strangers who welcome us into their midst, for people from other lands who call us to grow in understanding, for children who lighten our moments with delight, for the unborn who offer us hope for the future, and be thankful for everything. Thank you very much. Om Shanti.